आप हैं SBS हिंदी के साथ।
एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। अचानक सामने आए 17 कोरोना मामलों से साउथ ऑस्ट्रेलिया बना कोविड हॉटस्पॉट। प्रधानमंत्री मॉरिसन ने कहा, समुदाय समझता है कोरोना के मानसिक दुष्प्रभाव। और नीतीश कुमार होंगे लगातार चौथी बार बिहार के मुख्यमंत्री, आज लेंगे शपथ। उत्तरी एडिलेड में सामने आए 17 कोरोना मामलों ने साउथ ऑस्ट्रेलिया को अचानक हॉटस्पॉट बना दिया है, जहां एक तरफ ये मामले सामने आते ही नॉर्दर्न टेरिटरी, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड और तस्मानिया ने साउथ ऑस्ट्रेलिया को हॉटस्पॉट घोषित करते हुए पिछले पखवाड़े में वहां यात्रा करे सभी नागरिकों को सेल्फ क्वारंटाइन करने के आदेश दिए हैं। वहीं न्यू साउथ वेल्स की प्रीमियर ग्लैडिस पेट्रिकलियन ने कहा है कि हर कोरोना आउटब्रेक के साथ बॉर्डर नहीं बंद किए जा सकते हैं। न्यू साउथ वेल्स में सामुदायिक फैलाव के कोई नए मामले सामने नहीं आए हैं और साउथ ऑस्ट्रेलिया से हाई रिस्क वाली जगहों से आए यात्रियों पर निगरानी करी जा रही है। श्रीमती पेट्रिकलियन का कहना है कि न्यू साउथ वेल्स अलग नज़रिया रखता है, क्योंकि हमें महामारी संभालने के साथ जीना भी है।
So obviously if health has identified venues in South Australia where it says if you're a close contact of this particular venue, stay home and get isolated, well obviously we expect people to follow those arrangements.
दूसरी तरफ विक्टोरिया ने साउथ ऑस्ट्रेलिया को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया है। विक्टोरिया में पिछले 17 दिन से न कोई नए मामले सामने आए हैं, ना ही कोरोना से किसी की जान गई है। राज्य में सोमवार को केवल 3 सक्रिय कोरोना संक्रमण के मामले थे। ऐसे में प्रीमियर डैनियल एंड्रूज कोई कोताही नहीं चाहते। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि साउथ ऑस्ट्रेलिया ये आउटब्रेक संभाल लेगा, लेकिन वहां से आने वाले यात्रियों को स्क्रीनिंग से तो गुजरना ही पड़ेगा।
It'll be a case-by-case process. When a person arrives at the airport, there'll be a sit-down with them, symptoms, have you been to any specific locations. Rapid testing may be a feature of that. I can't quite confirm that yet, but I've asked our public health team to look at that because, you know, we don't want to take any chances at all.
संघीय सरकार आज विवादित रोबोटेट स्कीम में एक क्लास एक्शन क्लेम में सेटलमेंट करने के लिए राजी हो गई है। रोबोटेट स्कीम गैर कानूनी ढंग से वेलफेयर लाभार्थियों पर कर्जे चढ़ाने के लिए विवाद में आई थी। इससे पहले कि आज संघीय अदालत में मामला पेश होता, सरकारी वकीलों ने सेटलमेंट होने का ऐलान कर दिया। इस सेटलमेंट पर अब एक न्यायाधीश की मुहर लगनी बाकी है। टैक्स ऑफिस और सेंटरलिंक के गलत मिलान के कारण हजारों ऑस्ट्रेलियाई कुल 720 मिलियन के रिफंड के इंतजार में हैं। लेबर पार्टी के श्री बिल शॉर्टन ने कहा है कि आखिरकार पीड़ितों को न्याय मिला है, पर फिर भी सरकार से इस लापरवाही का हिसाब मांगा जाना चाहिए।
But it should never have taken 4 years and the resolution of the largest class action in Australian legal history for 400,000 everyday Australians to seek justice. I congratulate not just the 7 plaintiffs who took on the system, but Gordon Legal, who ran the class action when I approached them about this matter.
राष्ट्रमंडल के लोकपाल ने पाया है कि संघीय पुलिस को संघीय मंत्री एंगस टेलर के खिलाफ अपनी जांच बंद करने से पूर्व उनसे सीधी पूछताछ करनी चाहिए थी। ऊर्जा मंत्री टेलर तब विवाद में घिर गए जब उन्होंने सिडनी की लॉर्ड मेयर मूर को चिट्ठी लिख काउंसिल स्टाफ के ट्रैवल पर 15 मिलियन की मोटी रकम खर्चने का आरोप लगाया था। बाद में पाया गया था कि यह व्यापक रूप से प्रसारित किया गया आंकड़ा गलत था और श्री टेलर ने माफी भी मांगी थी, पर संघीय पुलिस ने सबूतों की कमी बताते हुए जांच बंद कर दी थी। लोकपाल को इसके विरुद्ध करीब 150 शिकायतें मिली, पर लोकपाल ने कहा कि अंततः जांच बंद करना पुलिस की अपनी न्यायिक सूझबूझ के प्रयोग का अधिकार था।
I want to acknowledge all those Australians who live with mental illness, those who have lived experience of suicide, their loved ones and their communities, their carers.
एक उत्पादकता आयोग यानी प्रोडक्टिविटी कमीशन की मानसिक स्वास्थ्य की रिपोर्ट ने सुझाया है कि कोरोना संक्रमित मरीजों को मानसिक स्वास्थ्य व्यवस्था के केंद्र में रखते हुए बच्चों पर खास ध्यान देने की ज़रूरत है। आज जारी हुई इस रिपोर्ट के अनुसार एक संकुचित अनुमान से भी मानसिक बीमारियां ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था के लिए हर साल लगभग 220 बिलियन का भार पैदा करती हैं। श्री मॉरिसन का कहना है कि स्वास्थ्य संबंधी खर्चे अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा प्रभाव डालते हैं और जनसाधारण की कुशल क्षेम राष्ट्रीय समृद्धि पर सीधा असर करती है।
I want to acknowledge all those Australians who live with mental illness, those who have lived experience of suicide, their loved ones, and their communities, their carers. In particular, I acknowledge the many veterans who struggle with mental health challenges.
अमेरिका के राष्ट्रीय हरिकेन सेंटर ने सूचना जारी करी है कि दूसरी श्रेणी का चक्रवर्ती तूफान आयोटा मध्य अमेरिका में विनाशकारी हवाएं और चरम वर्षा की स्थिति ला सकता है। अधिकारियों को यह चिंता सता रही है कि यह तूफान दो हफ्ते पहले आए चक्रवर्ती तूफान एटा से हुई बर्बादी को और भी भयंकर बना देगा। रविवार को हरिकेन आयोटा 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती तेज हवाएं लिए निकारगुई होंडुराई तटरेखा से करीब 400 किलोमीटर दूर स्थित था। और अब खबरें भारत से, नीतीश कुमार होंगे।
एनडीए विधायक दल के नेता का निर्वाचन हुआ है और श्री
नीतीश कुमार होंगे बिहार के मुख्यमंत्री और आज लेंगे शपथ। नीतीश कुमार लगातार चौथी बार बिहार के मुख्यमंत्री चुने गए हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह सोमवार यानी आज भारत के समय से 4:30 बजे होगा। पटना में 15 नवंबर की देर शाम को खत्म हुई एनडीए की विधायक दल सभा के बाद आला बीजेपी नेता और भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए घोषणा की कि श्री नीतीश कुमार सर्वसम्मति से एनडीए गठबंधन के नेता चुने गए हैं।
एनडीए विधायक दल के नेता का निर्वाचन हुआ है और श्री नीतीश कुमार सर्वसम्मति एनडीए विधायक दल के नेता निर्वाचित।
तारकिश, बिहार की एनडीए सरकार में लंबे अरसे से उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे श्री सुशील मोदी को अब केंद्र सरकार की कैबिनेट में नई जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। उनकी जगह बिहार के अगले उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद होंगे। श्री प्रसाद कटिहार से बीजेपी के विधायक चुने गए हैं। बिहार में सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए की रविवार को बैठक हुई जिसमें नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से बिहार एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया गया। तारकिशोर प्रसाद को भाजपा विधानमंडल दल का नेता सर्वसम्मति से चुना गया। उनके नेता चुने जाने पर सुशील मोदी ने उन्हें ट्वीट द्वारा बधाई दी जिसके साथ ही श्री मोदी की रुखसती का रास्ता साफ हो गया था। दिल्ली में कोरोना वायरस का संक्रमण चिंताजनक रूप से बढ़ने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार शाम को आपात बैठक बुलाई थी जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित कई संबंधित लोग मौजूद थे। रविवार शाम तक अकेले दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 7,340 नए मामले सामने आए थे। भारतीय केंद्र सरकार ने वादा किया है कि वह दिल्ली में कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए 750 नए इंटेंसिव केयर यूनिट बेड उपलब्ध कराएगी। साथ ही दिल्ली सरकार रोजाना टेस्टिंग संख्या को 60,000 से बढ़ाकर 1,00,000 करेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक करने के बाद ये बात कही।
केंद्र सरकार ने आज एश्योरेंस दिया है कि वो जो DRDO का सेंटर है वहाँ पे अगले दो दिन में 500 ICU बेड्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे और उसके अगले कुछ दिन में 250 और, तो लगभग 750 ICU बेड्स वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। दूसरा बड़ा निर्णय था कि जो अभी टेस्ट्स किए जा रहे हैं, अभी लगभग 60,000 टेस्ट हम लोग डेली कर रहे हैं, इसको बढ़ा के 1,00,000-1,25,000 तक हमें इन टेस्ट्स को डेली बढ़ा के ले जाना है।
कोविड 19 संक्रमण की रोकथाम के लिए रूस से स्पुतनिक 5 टीके की पहली खेप अगले सप्ताह उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर स्थित गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज पहुंचने की संभावना है। एक आधिकारिक जानकारी के अनुसार ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से डॉक्टर रेड्डी प्रयोगशाला को अनुमोदन मिलने के बाद दूसरे और तीसरे चरण का मानव क्लिनिकल परीक्षण किया जाएगा। कॉलेज के प्राचार्य आरबी कमल ने कहा कि टीके का परीक्षण अगले सप्ताह से शुरू हो जाएगा। श्री कमल ने कहा इसके लिए 180 से ज्यादा स्वयं सेवकों ने अपना पंजीकरण करा लिया है। उन्होंने बताया शोध प्रमुख डॉक्टर सौरभ अग्रवाल टीके की खुराक का निर्धारण करेंगे। संबंधित व्यक्ति को एक खुराक देने के बाद यह तय किया जाएगा कि उसे आगे और खुराक देनी है या नहीं। ये भी बताया गया कि एक या दो बार टीके लगाने के बाद उसके प्रभाव का 7 माह तक अध्ययन किया जाएगा। टीके के प्रभाव का 1 माह तक अवलोकन करने के बाद अधिकारियों को इसके परिणाम से अवगत कराया जाएगा और उसके अनुसार ही कोई फैसला लिया जाएगा। और अब डॉलर का हाल। आज यानी सोमवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 54.31 रुपये और अमरीकी डॉलर की तुलना में एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत 72 सेंट्स थी। और अब खबरें खेल के मैदान से। टेनिस ऑस्ट्रेलिया ने AFL हब की तर्ज पर गर्मियों में होने वाले अपने सारे बड़े आयोजन विक्टोरिया स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। संगठन ने तय किया है कि हर बार कई राज्यों में होने वाले कम से कम 5 आयोजन विक्टोरिया में आयोजित किए जाएं ताकि प्रतिभागी सहजता से यात्रा कर सकें। ऐसी संभावना भी जताई गई है कि कुछ आयोजन मेलबर्न ओपन के बाद स्थानीय इलाकों में भी किए जा सकते हैं। आखिर में नजर डालते हैं कल यानी मंगलवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। पर्थ में कल बादलों की आवाजाही रह सकती है। यहां अधिकतम तापमान 24 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। एडिलेड में ज्यादातर धूप रहने की संभावना है। यहां अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मेलबर्न में बदली छाने की आशंका है। यहां अधिकतम तापमान 20 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। देश की राजधानी कैनबरा में धूप खिली रहेगी। यहां का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। सिडनी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। यहां अधिकतम तापमान 22 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। ब्रिस्बेन में हल्की पुहारों की संभावना है। यहां अधिकतम तापमान 31 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। डार्विन में छिटपुट बारिश का अनुमान है और तूफान की संभावना जताई जा रही है। अधिकतम तापमान 36 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में बादलों के बीच हवा की गुणवत्ता का स्तर बेहद हानिकारक रह सकता है। यहाँ अधिकतम तापमान 27 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आज समाचार में इतना ही। नमस्कार।
ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं? एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई या फिर जहां आप पॉडकास्ट सुनते हैं वहां हम हैं।